अभी आज बड़ा एक शुभ दिन है। इस वर्ष का जो दो भाग होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन, आज से दक्षिणायन शुरू होता है, कर्क संक्रांति है। जैसे जनवरी में मकर संक्रांति से फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर उत्तरायण शुरू होता है, और ये जून जुलाई जुलाई में कर्क संक्रांति है जहां उत्तरायण समाप्त होता है और दक्षिणायन शुरू होता है। देवियों सज्जनों, इससे पहले हम लोग स्वामी दयानंद जी के लिखित स्वमंतव्य मंतव्य से अलग अलग चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, धर्म क्या है। तो अभी नए प्रसंग शुरू करते हुए सोचते हुए गीता का एक बड़ा सुंदर अध्याय मिला, 16वां अध्याय, जो ये बताता है कि इंसान के अंदर देवत्व और असुरत्व को पाने का, यही इंसान ही देवता बनता है और यही राक्षस बनता है, शैतान बनता है, ये दोनों गुण उसके अंदर होते हैं। ऐसे कौन से गुण है जिसको व्यवहार करने से व्यक्ति देवता बन जाता है, और ऐसे कौन से गुण है जिससे वो राक्षस बन जाता है? देवता या राक्षस कोई स्वर्ग में रहने वाले, ऊपर रहने वाले कोई अजर अमर देवता नहीं होते हैं, या राक्षसों का कोई ऐसे ज्योग्राफिकली प्लेस नहीं है कि जहां वो रहते हो। वो इंसान ही होता है जो शैतान होता है या भगवान होता है, देवत्व को प्राप्त करता है। तो उस पर कुछ दिन चर्चा करेंगे, वो कौन से गुण है जो इंसान को देवता तक देवत बना देता है, और कौन से गुण है जो इंसान को असुर या शैतान बनाता है। इंसान बहुत मायने में जिसे हम मनुष्य कहते हैं या प्राणी कहते हैं, लिविंग बींग कहते हैं, तो वो कोई सिंगल एंटिटी नहीं है। वैसे ही हम एक जोड़ा है, एक पेयर है, आत्मा और शरीर का मिलावट है। एक शरीर जो जड़ है, जो मैटर है, एक आत्मा जो कॉन्शंस है, कॉन्सेंस है, दोनों के मिलावट से ये जीवन है। पर ये जीवन सिर्फ इतना नहीं है, और भी बहुत सारे पेयरों से, जोड़ों से बना हुआ है। तो ये एक द्वैत है, बहुत सारे चीजों के पेयर से, जोड़े से बना हुआ हमारा जीवन है। इवन हमारे इमोशंस भी सिंगुलरिटी के साथ नहीं आते हैं, वो हमेशा पेयर में आते हैं। अगर आप प्यार करते हैं तो आप नफरत भी जरूर करते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको कभी शांति से भी रहना पसंद आता है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, पेयर में चलते हैं। अच्छाइयां और बुराइयां भी दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही कॉइन के दो साइड होते हैं, और दोनों हमारे अंदर होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, बुरे से बुरा आदमी, खराब से खराब आदमी, जिसमें अच्छाइयां ना हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, महान से महान आत्मा, जिसमें कोई बुराई ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये केवल शुद्ध आत्मा में या शुद्ध परमात्मा में संभव है, जो पूर्णतः शुद्ध हो, प्योर हो। क्योंकि हम जोड़े में बने हैं, तो हमारे अंदर वो सारे अच्छाई और बुराइयां दोनों होती हैं। नरक जाने की रास्ता भी हमारे से ही निकलती है, और स्वर्ग जाने का रास्ता भी हमारे से ही निकलती है। अगर हम अपने जीवन को एक सीढ़ी बनाएं, सीढ़ी का दोनों छोर होता है, दोनों साइड होता है। आप चाहें तो उसे ऊपर चढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो उसे नीचे भी आ सकते हैं। कुछ लोग जीवन को नरक की ओर ले जाते हैं, और कुछ लोग जीवन को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। कुछ लोग कहीं मूव ज्यादा नहीं करते हैं, बीच में ही बने रहते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। आफ्टर ऑल लाइफ है, जीवन है, तो आपको मूवमेंट तो होगी, एक्टिविटीज तो होंगी, आप कुछ ना कुछ करेंगे, तो यात्रा जर्नी तो चलेगी। तो यात्रा नरक की ओर जाएगी या स्वर्ग की ओर जाएगी, ये दोनों हमारे अपने अंदर से ही डिसाइड होता है, कोई दुनिया या कोई सर्कमस्टांसेस या एटमोस्फियर नहीं करते, वो सिर्फ हमें हेल्प करते हैं अच्छा बनने में या बुरा बनने में। ध्यान रखिएगा, नरक जाने की भी उतनी ही ताकत की जरूरत है, उतने ही मेहनत की जरूरत है जितना स्वर्ग जाने के लिए चाहिए। अच्छा आदमी बनने के लिए जितना मेहनत की जरूरत है, बुरा होने के लिए उतने ही, कभी कभी उससे ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। किसी भी क्रिमिनल की लाइफ देखिए, वो आपसे ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा रात तक जगता है, ज्यादा टेंशन में रहता है, ज्यादा मेहनत करता है, बुरा बनने के लिए कभी कभी ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उससे कम नहीं अच्छा बनने के लिए जितना परिश्रम। ओवरऑल है कि परिश्रम करना है, उस श्रम के पीछे कौन सी एटीट्यूड हम रखते हैं उससे हम अच्छा बनते हैं या बुरा बनते हैं। अच्छा अच्छे रास्ते पर चलते, अच्छे सोच के साथ परिश्रम करते तो रिजल्ट अच्छा होता है, सुखी होते हैं, आखिर में आनंद मिलता है, शांति मिलती है। बुरे सोच के साथ वही काम करते, बुरी भावना के साथ वही काम करते, उतने ही परिश्रम करते, आखिर में दुख मिलता है, डिप्रेशन मिलता है, निराश में जीवन बीतता है। इसीलिए ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि जो पापी है, जो अपराधी है, जो गलत आदमी है, वो तपस्या नहीं करता, वो भी तपस्या करता है, अच्छा आदमी भी तपस्या करता है। आप रामायण देखते हैं, पढ़ते हैं, रामायण में महर्षि वाल्मीकि दो अलग अलग सोसाइटी का वर्णन करते हैं, एक लंका में, एक अयोध्या में, तीसरी सोसाइटी किष्किंधा में, उसकी बात हम बाद में करेंगे। दोनों जगह बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों जगह लोग यज्ञ करते हैं, लंका में भी लोग यज्ञ करते थे, अयोध्या में भी यज्ञ करते थे, लंका में भी वेद पाठ होता था, रावण खुद बड़े विद्वान था, अयोध्या में भी होता था, सारी धार्मिकता, वहां भी मेडिटेशन होता था, यहां भी मेडिटेशन होता था, पर एक राक्षस है, एक मनुष्य है, एक अयोध्या अरे एक लंका है। अगर आप कंपेयर करें, लंका में ज्यादा वेद ध्वनि सुनाई देती थी, ज्यादा बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, और असुर लोग कुछ ज्यादा ही तपस्या करते थे। फर्क क्या है? फर्क है कि उसके पीछे का एटीट्यूड में, इंटेंशन में, किस तरह की शक्ति उसमें उन्होंने लगा रखा है, और उस शक्ति के कारण, उस एटीट्यूड के कारण एक राक्षस है, एक शैतान है, और एक इंसान जो देवत्व को प्राप्त करता है। इसलिए यह मत सोचिएगा कि गलत आदमी तपस्या नहीं करता, वो आपसे ज्यादा तपस्या करता है, फर्क इतना होता है कि वो किस तरह के गुणों के साथ करता है, उससे फर्क पड़ता है। इसलिए अगर आपको कहीं पुराणों में या किसी शास्त्रों में आपको नरक या स्वर्ग की अवधारणा मिले, कोई कंसेप्ट मिले, तो वो नरक या स्वर्ग किसी भौगोलिक स्थान का या कोई ज्योग्राफिकल प्लेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं कि हमने कैसा स्टेट ऑफ माइंड बनाया जिसे हमारा जीवन नरक है, और कैसी स्टेट ऑफ माइंड बनाया जो हमारा जीवन स्वर्ग है। दिन भर काम करने के बाद जब घर वापस आता हूं, घर नरक जैसा लगता है, इतनी तनाव घर के अंदर है, इतनी अशांति है। और कभी दूसरा व्यक्ति है जो ऑफिस छुट्टी होने से पहले ही सोचता रहता है कब घर पहुंचूं, उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। ये हमने क्रिएट किया है। और क्रिएशन फिजिकली नहीं होता है, फिजिकली तो इंप्लीमेंट होता है, मेंटली होता है। हम मेंटली किस तरह के एनर्जी, किस तरह की शक्ति हमने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इसीलिए देवत्व और असुरत्व ये दोनों हमारे मनुष्य के ही दो अलग अलग छोर है, दो अलग अलग अंत है। हम परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम के पीछे जिस तरह की एनर्जी लगी रहती है उससे या तो हम देव बन जाते हैं या असुर बन जाते हैं। इसलिए अगर आप शैतान या राक्षस ढूंढने के लिए बाहर निकलेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, मूवी फिल्मों में दिखाई देगा, कहानियों में दिखाई देगा। या अगर आप देवता ढूंढने लगे तो आपको किसी पौराणिक कथाओं में मिलेगा, क्योंकि बाहर तो है नहीं, वो तो हमारे अंदर है। तो अंदर आपको मिलेगा कि आप शैतान हैं कि आप इंसान हैं। तो मनुष्य अपने श्रम से, अपने गुणों से, जिन गुणों से देवत्व को प्राप्त करता है, उसे कृष्ण ने यहां दैवी संपद बोला। जिन गुणों से असुरत्व को, राक्षस को, शैतानियत को प्राप्त करता है, उसे उसने आसुरी संपद बोला। तो दो संपदाएं हैं जीवन में, एक आसुरी है, एक दैवी है, एक डिवाइन है और एक डिमोनिक है। ये संपदा मतलब धन है, धन मतलब शक्ति, कैपिटल, जिसको आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसको लगाते हैं, जिसके द्वारा आप कुछ पाते हैं। आप धन लगाते हैं, स्वास्थ्य लाते हैं, धन लगा करके सुख लाते हैं, पैसा खाना लाते हैं, कपड़े लाते हैं, घर बनाते हैं। आप उस धन को खर्च करके क्या क्या बटोरते हैं, सुख लाते हैं या दुख लाते हैं। आप पैसे खर्च करके दुख भी खरीद के लाते हैं, आप पैसे खर्च करके सुख भी लाते हैं। खाना पैसे से मिलता है, खाना आप खरीदते हैं पैसे दे करके। कैसा खाना खरीदते हैं, बीमार बनने के लिए या स्वस्थ बनने के लिए, ये हमारे हाथ में होता है। तो जिस तरह का हम अपने आप को, अपने चीजों को खर्च करते हैं, उससे डिसाइड होता है कि हमारा लाइफ कैसा है। तो अगर वो उसी एनर्जी को सही ढंग से यूज करे तो वो देवता कहलाता है, बाकी इंसानों से ऊपर उठ जाता है, हमारे में से वो ज्यादा एडोरेबल हो जाता है, ज्यादा पूजनीय हो जाता है। और उन्हीं गुणों का जब दूसरे ढंग से प्रयोग करता है तो वो फिर निंदा के योग्य हो जाता है, इंसानों में से नीचे गिर जाता है, लोग उसको जानवर कहने लग जाते हैं, शैतान कहने लग जाते हैं। तो ऐसा है कि संपत्ति तो सबके पास होनी चाहिए, संपत्ति, प्रॉपर्टी या पैसा, धन। प्रॉब्लम यह है कि हमें समझनी चाहिए, बा हमें ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए, मेरे पास जो धन है, जो प्राकृतिक, जो नेचुरल क्वालिटीज मेरे पास है, उनमें से कौन सा दैवी है जो मुझे डिवाइन वे पर ले जाए, दैव रास्ते पर ले जाए, कौन सा असुरी है जो मुझे डिमोनिक वे पर ले जाए। ये जब तक हम ठीक से समझे नहीं अपने बारे में, तो फिर कभी कभी हम बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कुछ मेहनत करते हैं, रिजल्ट हमें उल्टा मिलता है, पता चला हम शैतान हो गए, निकले तो देवता बनने पर असुर बन गए। ये पता होना बड़ी जरूरी है, क्योंकि लोग गलती कहां करते, धोखा खा जाते हैं। जिस धन से वो संसार को खरीदने चलते हैं, सांसारिक चीजों को खरीदने चलते हैं, जब आप उन्हीं धनों से सुखों को खरीदने चलेंगे, धर्म को खरीदने चलेंगे, तो लास्ट में धोखा मिलेगा। आप पैसे लेकर के कपड़े खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, सांसारिक सुख सुविधाएं खरीदते हैं, और किसी को लगा कि इन्हीं धनों से ही मैं धर्म को खरीदूंगा, शांति खरीदूंगा, आनंद खरीदूंगा, प्रभु की प्राप्ति को खरीदूंगा, तो वो इन्वेस्ट करता है किसमें? मंदिर में। दान देता है, मंदिर बनाता है और बहुत सारी चीजें करता है, और सोचता है कि मैं धर्म को ला रहा हूं, मैं पुण्य कमा रहा हूं, मैं ईश्वर के नजदीक जा रहा हूं। तो पता चला आप करोड़ों खर्च कर चुके हैं, आखिर में उतने के उतने शैतान बने बैठे हैं। ये कोई एक दो एग्जाम्पल देने लायक नहीं है, ये तो आपके गली गली में आपको मिलेगा। क्योंकि हम गलत संपत्ति को सही चीज पाने के लिए लगाते हैं, या सही चीज को गलत सही संपत्ति के द्वारा गलत चीज पाने में लगाते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन होना जरूरी है। इसीलिए कृष्ण एक बड़ा सुंदर अध्याय बनाते हैं, व्यास बनाते हैं कृष्ण के द्वारा, कि लोगों को पता लगे कौन से उसके अंदर गुण है जो उसको दैवत्व तक ले जाए, कौन से गुण है जो उसको तो असुरत्व तक ले जाए। तो दैवी संपदा का अर्थ है जिसे आप देवत्व को पा सकें, संपत्ति से देवत्व को खरीद सकें, पा सकें। तो इसीलिए ठीक से पहचान कर लेना जरूरी है, जिसे आप उसके सही मायने में यूज कर सकें। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप परिश्रम करें, मेहनत करें, पूरे जीवन लगाएं, धन भी लगाएं, तन भी लगाएं, मन भी लगाएं, और लास्ट में पता चला कहीं पहुंचे ही नहीं। मंदिर में खूब दान दिया, बाबाओं की खूब सेवा की, आश्रमों में खूब सेवा की, पर अंदर कहीं कोई सुकून नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है प्रभु को पाने का। इसीलिए यह समझना जरूरी है, कहीं तुम्हारे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी आसुरी गुणों को दैवत्व को देवत्व को पाने में लगा रखे हो। एक क्रोधी आदमी है जिसको बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो कोई तोड़ फोड़ करेगा, दूसरों को तोड़ेगा, उसको आप साधना में बैठा दो बैठ जाएगा, आसानी से करेगा, क्योंकि तोड़ना तो है, बाहर तोड़ता है तो अंदर तोड़ेगा, अच्छा साधक बनेगा, कोई डाउट नहीं है देवियों सज्जनों। पर उसका क्रोध को वो यूज कर रहा है साधना के रूप में, तू तो रावण बनेगा, कंस बनेगा, हिरण्यकश्यपु बनेगा, हिरण्याक्ष बनेगा, वो भी ध्यान करते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं, वो बनेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि समझना कि हम कौन सी संपत्ति से क्या खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे लोग बड़ी शारीरिक तपस्याएं करते हुए देखेंगे, आप कभी कभी मेस्मराइज्ड होंगे, कभी आप कुंभ में जाएं, लोग कांटे पर सोए हुए मिलेंगे, कुछ साधु लोग एक पैर पर खड़े हुए मिलेंगे, किसी को पूछो तो कहेगा मैं 12 साल से अन्न ग्रहण नहीं किया हूं, सिर्फ पानी पीकर जिंदा हूं, कोई कहेगा मैं 14 साल से एक हाथ ऊपर रख करके खड़ा हूं, बहुत कष्ट है, आप नहीं कर सकते। आप 5 मिनट के लिए भी हाथ ऊपर करिए, देखिए कितना कष्ट होगा आपको, सिंपल सी काम है, नहीं होगा आपसे। और वो 14 साल से हाथ ऊपर कर रखा है, आप तो नीचे हो भी नहीं रहा है। अब पानी पी के एक दिन रहिए देखिए, और 14-15 साल से बिना खाए पानी पिए रह रहा है, तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, जरूर कहीं पहुंचेगा। कुछ जरूरी नहीं कहीं पहुंचेगा, हो सकता है नरक भी पहुंचे। उसको आप लोगों को मारने में लगा देते तो भी बढ़िया मारता, खड़ा करवाने लगा दिया तो खड़ा हो गया, हवन में बैठा देते तो हवन भी बढ़िया करता। अंदर के कोई परिवर्तन नहीं है और कोई गुण को उसने कल्टीवेट नहीं किया है, इसीलिए किसी को धन बहुत कमा रहा है, धन ऐसे कमा रहा है मानो जिंदगी में और कुछ है ही नहीं धन कमाने के अलावा, कमाते जा रहा है। अचानक उसको पता चला, लोगों से पता चला, शास्त्र पढ़ने से पता चला, या कहीं सत्संग करने से पता चला, दान देने से, धन को त्यागने से स्वर्ग मिलेगा, अगले जन्म में उसको स्वर्ग मिलेगा, ज्यादा सुख मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, पुण्य होगा तो अगला जन्म भी सुधरेगा। उसको ये बात जच गई, बहुत पैसा कमाया, अब वो पैसा देने लग गया, खूब देने लग गया। दान करना बड़ी अच्छी बात है, पर किस भाव से कर रहा है वो दैव या असुरत्व का निर्णय, असुरत्व का निर्णय करता है। वो धन कमा रहा था लालच के कारण, दिव्यों सज्जनों, वो धन आज बांट रहा है लालच के कारण। उसके मूल में लालच है जो ये नहीं समझ पा रहा है, या उसका गुरु उसको नहीं समझा पा रहा है। तू जो धन बांट रहा है उससे भी तुझे नरक ही मिलेगा, क्योंकि तेरे इंटेंशन में तो लालच है। इस जीवन में कमाया असुख के लिए, अब ये जो बांट रहा हूं अगले जीवन के लिए, सेविंग के लिए। तो अगर स्वर्ग ना पहुंचे, नरक पहुंच जाए, किसी को कोसे तो गलती किसी की नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आसुरी संपत्ति, आसुरी विचारों से तुमने ये दान किया था जिसमें लालच छुपा हुआ था, कुछ बिजनेस माइंड छुपा हुआ था कि मैं अभी दूंगा तो मुझे अगले जन्म के लिए सुख के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है। जैसे हम रिटायर्ड आफ्टर रिटायरमेंट के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं कि लाइफ ठीक ठाक बीत जाए, तो मरने के बाद के लिए भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए उसमें स्वर्ग आसुरी विचारों से कभी स्वर्ग नहीं मिलता, आसुरी संपत्ति से कभी आप सुख नहीं पा सकते। इसीलिए ये क्लियर होना जरूरी है, ये डिवीजन होना जरूरी है, कौन सा गुण जिसको लेकर काम करने से मुझे आगे अच्छा चीजें मिलेगा, मैं देवत्व को प्राप्त करूंगा, या कौन से गुणों के साथ काम करने से मैं असुरत्व को या सैतानियत को प्राप्त करूंगा। ये जब ठीक ठीक डिस्क्रिमिनेट हो जाता है तो फिर आप सही रास्ते पर पहुंचते हैं। साध्य गोल आपका कितना भी स्पष्ट हो, क्लियर हो, अगर साधनों को क्लियर आपने नहीं समझा, उसके इंस्ट्रूमेंट को आपने ठीक से एनालाइज नहीं किया, तो भी आप गलत रास्ते पर पहुंचेंगे। इसीलिए दोनों को समझना जरूरी है। और देवी और सज्जनों, दोनों हमारे पास है, ये दोनों कहीं बाजार में नहीं मिलता, ये हमारे अपने इनहेरिटेंट क्वालिटीज है, ये हमारे स्वभावज सहज गुण है, ये हमारे अंदर होते हैं, इनको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होता है। अगर आपको कोई अच्छा आदमी दिखाई देता तो बुरा आदमी भी दिखाई देता, और जो बुरा आदमी है कब वो अच्छा बन जाता है पता नहीं चलता है, और इसी तरह कोई अच्छा आदमी है पता नहीं कब बिगड़ जाए। क्यों? दोनों हमारे पास है, बस उसको सही हवा पानी मिल जाए, अच्छाई भी हमारे अंदर, बुराई भी हमारे अंदर, अच्छाइयों को सही हवा पानी मिले तो पेड़ बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, और बुराई को भी सही हवा पानी मिले तो वो भी बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। दोनों हमारे अंदर होते हैं, बाहर हमें कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने सबके अंदर वो अच्छाइयां और बुराइयां दे रखी है। हम अच्छे हैं या बुरे हैं ये हमारा अपना क्रिएशन है। ईश्वर ने सबको, जब आप पैदा हुए तो ब्लैंक चेक देकर के भेजा था, अमाउंट भरना हमारे हाथ में था। हम अपने जीवन भर में अमाउंट भरते रहते हैं, जीरो भरे, माइनस भरते हैं, प्लस भरते हैं। हमारे पास जो कुछ है वो हमारी अपनी कमाई का है, ईश्वर के दिया हुआ सिर्फ ब्लैंक चेक है। इसीलिए ये दोनों को समझना बड़ी जरूरी होती है। पहला श्लोक तो इस अध्याय में आपको कौन से दैवी संपत्ति है और कौन से आसुरी संपत्ति है उसके बारे में चर्चा होगी। मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। तो एक लिस्ट है दो चार श्लोकों तक जो कि दैव गुण है, जो डिवाइन नेचर है, जो हमारे अंदर है। ये सब सबके अंदर है देवियों सज्जनों। ऐसा मत सोचिए कि बुरे से बुरे आदमी के अंदर कोई भी दैव गुण कम है या अच्छे से अच्छे आदमी के अंदर कोई आसुर गुण कम है। फर्क इतना है कौन डोमिनेट करता है, हमने कौन से गुणों को डोमिनेट करने दिया और किसी को हमने डोरमेंट में डाल दिया, स्लीपी मोड में डाल दिया है। अभयम भय रहितता, जिसके अंदर कोई डर नहीं है, जो फियरलेसनेस है, ये एक गुण है जो दैव संपत्ति है। देखिए सज्जनों, इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है। जब हम अभयम कहते हैं, फियरलेसनेस, वो दो तरह की होती है। एक तो फियरलेस वो भी है जो क्रिमिनल्स हैं। आपको पता है एक क्रिमिनल में, एक अच्छा आदमी में क्या, एक अच्छा आदमी, सीधा साधा आदमी और एक अपराधी आदमी में बेसिक क्या अंतर है मेंटली? एक बहादुर है, एक कायर है। ये रिस्क लेना जानता है, दूसरा चाहकर भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। अगर आप साइकोलॉजिकली एनालाइज करें, हर आदमी में कहीं ना कहीं चोरी की भावना है, पर जो लाइफ में कभी चोरी किया नहीं या बहुत कम किया है, इसीलिए कि चोरी का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो रिजल्ट है, उससे वो डरता है। वो पारलौकिक हो कि करना पाप है, या पुलिस से डर हो, सोशल स्टेटस से डर हो, मां बाप से डर हो, किसी ना किसी से जो डर है, जो भय है, वो उसे करने नहीं देता है। ध्यान रखिए, डर है। क्रिमिनल कौन है? जो उस डर को जीत जाता है, जो होगा देखा जाएगा। ये निर्भयता जो है, डर को जीत जाना, हमारे जो सैनिक होते हैं वो, उनमें भी डर होता है। जो क्रिमिनल हो या कोई सोल्जर हो या कोई बहादुर आदमी हो, ये तीनों में एक कॉमन चीज होती है कि वो डर को जीतते हैं। दे कॉन्क्योर देयर फियर फैक्टर। उनमें भी डर है। जब कोई हीरो, कोई बहादुर आदमी, महिला किसी ऐसे इंसिडेंट में, कोई पानी में डूब रहा हो, कोई एक्सीडेंट हो रहा हो, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जाऊं कूद के उसको बचा लूं। बहुत लोग नहीं कूद पाते, नहीं जा पाते, इच्छा है पर कर नहीं पाते। क्यों? डर है, मैं भी मर जाऊंगा। पर उनमें से एक है जो कूद पड़ता है बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि उसको डर नहीं था, उसको भी डर था, पर उस डर पर काबू पाना जानता है, इसीलिए हम उसको बहादुर कहते हैं, हीरो कहते हैं। हमारे अंदर वो डर को हम जीत नहीं पाए हैं। आम आदमी में, सब में डर है। कितना भी बहादुर हो, कितना भी कायर हो, कितना भी छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, ऑनेस्ट हो, डिसऑनेस्ट हो, सबके अंदर डर है। कोई डर को जीतता है, वो अगर अच्छाई के लिए जीतता है तो वो हीरो बन जाता है, बुराई के लिए जीतता है तो वो क्रिमिनल बन जाता है। कोई डर को जीत नहीं पाता है, वो भी नीडर होता है। पर यहां नीडरता उस अर्थ में नहीं है, आध्यात्मिकता में, जिसमें भय ही ना हो। ना वो कायर है, ना वो बहादुर है, ना वो कोई हीरो है, ना वो कोई कावर्ड है, वो सेंसी नहीं है। क्योंकि भय जहां से पैदा होता है, भय का जो सोर्स है, महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि जो अभिनिवेश है, जो भय है, उसका कारण है मृत्यु का बार 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 जो स्मृति है, संस्कार है, वही भय होता है। तो देवियों सज्जनों ध्यान रखिएगा, किसी से भी डरें, डर का जो सोर्स, जो ओरिजिन है, यह है मौत। आप गरीब होने से डरते हैं, बूढ़ा होने से डरते हैं, सजा खाने से डरते हैं, किसी से भी डरते हैं, मूल में जाएंगे आपको साइकोलॉजिकली पता चलेगा उसके मूल में मौत है। अगर हम धन चले जाने से डरते हैं इसीलिए कि धन नहीं होगा, गरीब हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, सहारा क्या होगा, घर टूट जाए, नष्ट हो जाए, बेसहारा हो जाऊं तो क्या होगा। आप जिससे भी डरते हैं, हमारा शास्त्र कहता है डर का एक ही कारण है, वह है मौत। पर जो व्यक्ति मौत क्या है समझ गया, मौत कुछ नहीं है, वह एक इंसिडेंट है, नेचुरल इंसिडेंट है, एक इटर्नल एंटिटी, जो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर लेता है। जब एक नया शरीर लेता है वो जन्म, शरीर को छोड़ देता है वो मृत्यु। इट्स अ पार्ट ऑफ द होल साइकिल ऑफ लाइफ, ये हम जानते हैं, सत्संगों में आते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर हम कभी इसको रियलाइज नहीं कर पाते, वो अनुभव में नहीं आता, इसीलिए हमारा डर नहीं निकलता। पर जिस व्यक्ति का वो भाव अनुभव में बदल गया, जो इसको रियलाइज कर गया कि जीवन कुछ नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है, एक स्टेज है, तो वो उस अभयता को प्राप्त करता है, वो भय को जीतता नहीं है, भय नामक चीज उससे खत्म हो जाती है, वो उसको देवत्व की ओर लेने में आसानी करता है। इवन आप भय रहित हैं, भय को दबाते हैं, तो भी वो निर्भयता भी आपके देवत्व का पहचान है, क्योंकि डरा हुआ आदमी कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। और एक मजेदार बात ध्यान रखिएगा, कमजोर आदमी, फिजिकली हो, मेंटली हो, इंटेलेक्चुअली हो, जो कमजोर होता है, और जो डरा हुआ आदमी सबसे ज्यादा डेंजरियस होता है, सबसे ज्यादा क्रूएल होता है, और सबसे ज्यादा वायलेंट होता है। दुनिया में आप इतिहास को देखिए, जितने बड़े बड़े हत्यारे हुए हैं, वो हिटलर से लेकर, स्टालिन से लेकर, नेपोलियन से लेकर, कोई भी, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स रहा जो वो अपने आप को छोटा समझते थे, या किसी भी कारण से, जो उनको मारने के लिए मजबूर करता है। आप जितना डरपोक हैं, आपसे दुनिया को उतना ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि आप उतना खतरनाक हैं। मान लीजिए आप सांप से डरते हैं, तो सांप को देखते ही वो जहरीला है नहीं है, जो सबसे पहले रिएक्शन होगा कि मैं सांप को कैसे मारूं या हटाऊं। पर अगर आप नीडर हैं, सांप से डरते नहीं है, तो 100 में 90% चांस नहीं है कि आप सांप को मारेंगे। पर अगर आप सांप से डरते हैं, 100 से 99% चांस है कि आप सांप को मारेंगे। डरा हुआ आदमी ज्यादा खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा। जानवरों की भी साइकोलॉजी देखिएगा, जानवर तभी आपको आप पर अटैक करते जब वो डरे हुए होते हैं। अगर जानवर को यह एहसास है कि यह मुझे मारने नहीं आया है, मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा, तो जानवर आप पर अटैक नहीं करेगा। ये ध्यान रखिए। तो इंसान हो या जानवर हो, अगर वो डरा हुआ है, खतरनाक है, बच के रहिएगा। निडर आदमी कम अहिंसक होता है। इसलिए महात्मा गांधी बड़े सुंदर बात कहते थे, जबकि शास्त्र की बात है, कि अहिंसा सिर्फ वही पालन कर सकता है अहिंसा का जो निडर हो। डरपोक आदमी कभी अहिंसक हो ही नहीं सकता। वो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ मारकाट तो करेगा ही करेगा। इसीलिए अभयता दैवगुण है, क्योंकि उसे हिंसा की पॉसिबिलिटी कम होती है और डर से हिंसा की संभावना ज्यादा होती है। इसी तरह अगला गुण बताया सत्व संशुद्धि। सत्व अर्थ मन, अंतःकरण, जो हमारा इनर सेंस है, जिसे हम मन या बुद्धि या चित्त कहते हैं, उसकी संशुद्धि, उसकी शुद्धता। मन हमारा, ये जो मन है, अंतःकरण है, ये बेसिकली सोसाइटी के द्वारा ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेड होता है। सोसाइटी मीन्स बच्चा पैदा होने के बाद मां बाप से लेकर के आगे सोसाइटी में जिससे भी डील करे उससे वो पॉल्यूटेड होता है, यही उसकी अशुद्धि है। और ये तो उस आइसबर्ग की जो टिप ऑफ आइसबर्ग का है, बाकी जो पूरा का पूरा आइस नीचे दबा हुआ है, उसकी अशुद्धि का कारण हमारे पुराने कर्मों का संस्कार। व्यक्ति का मन वैसा ही है जैसा वो बचपन से ट्रेंड है। ये बड़ा मुश्किल है कह पाना कि अच्छा है या हमारी अच्छाई और बुराई को एनालाइज करने का जो क्राइटेरिया है वो भी हमारे वो ट्रेंड मन के द्वारा निर्धारित होता है। मैं भारत में पैदा हुआ हूं, कुछ चीजों के बारे में कौन क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये मैं वो नहीं जानता हूं जो यूनिवर्सियली सच है। वो मैं जानता हूं जिस तरह के माहौल में मेरे मन ट्रेंड हुआ है। इवन पढ़ने लिखने के बाद भी, समझने के बाद भी, मैं जानता हूं कि ये सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या गलत है या सही है, पर उसके बावजूद भी वो जो संस्कार, वो जो ट्रेनिंग मेरे मन को मिला है और वो मेरे सबकॉन्शियस में दबा हुआ है, वो मुझे मजबूर करता है ये मानने के लिए कि ये गलत है, सही है। जोक के रूप में एक छोटी सी इंसिडेंट लेते हैं। हम भारतीय लोग जब प्रसाद चढ़ाते हैं हवन में, कुछ शिष्टकृत में डालें या लोग मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं, अब वो जिस स्टेट का है, वो देश भी छोड़ दीजिए, भारत का है वो भी जिस स्टेट का है, अगर पंजाबी है, हरियाणी है, तो रोटी दाल चढ़ेगी प्रसाद में। साउथ इंडियन है तो चावल सांबर चढ़ेगा प्रसाद में, मतलब उनके भगवान चावल सांबर खाएंगे, इनके रोटी दाल खाएंगे। अगर पिज्जा चढ़ा दिया तो पंडित जी देखो कितने नाराज होंगे। देसी पिज्जा, बिल्कुल वेजिटेरियन शुद्ध पिज्जा, घी में बना के चढ़ाओ, चलेगा नहीं? क्यों? ट्रेंड माइंड है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ओहो ये पिज्जा, क्योंकि लाइफ में हमने कभी सुना नहीं, किसी ने बताया नहीं, ये तो हमने पहली बार वेस्टर्न लोगों से सुना है, हो ही नहीं सकता, मन मानेगा नहीं। आपको समझा दिया क्या फर्क पड़ता है, आप पिज्जा चढ़ा रहे हो, बर्गर चढ़ा रहे हो, या राजमा चावल चढ़ा रहे हो, या रोटी सब्जी चढ़ा रहे हो प्रसाद में, क्या फर्क पड़ता है? आपको समझा दिया कि फर्क कुछ नहीं पड़ता, तो भी मन नहीं मानता। क्यों? कि जो सबकॉन्शियस में जो संस्कार बना हुआ है वो इतनी इजीली धोने वाला नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या सही है, इंसानी नेचर को समझने की जरूरत है, जरूरत है। तो इसलिए हमारी जो मन की अशुद्धि है वो हमारी जो ट्रेनिंग है बचपन से लेकर आज तक, और सबसे ज्यादा जो जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से, पता नहीं मैं कौन से मन से होकर, शरीर से होकर आया हूं, शेर, बाघ, चीता, हाथी, घोड़ा, चींटी, बिच्छू, पेड़ पौधा, इंसान, इंसानों में अलग अलग प्रोफेशन करने वाला, कितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार लेकर के मैं आया हूं। जिस मन से आप डिसीजन लेते वो तो सिर्फ पानी के ऊपर का, अगर आइस का 10% जो है, 10% जो कि जल के ऊपर होता है, उतना आपका जो कॉन्शियस माइंड है। अवचेतन सबकॉन्शियस तो नीचे 90% छुपा हुआ है। आप कॉन्शियस माइंड में ये डिसाइड कर लेते हैं ये गलत है, मुझे ये नहीं करना, गुस्सा करना बुरी बात है। कितने लोग कहेंगे कि गुस्सा करना सही बात है? किसको नहीं पता कि गुस्सा करना बहुत बुरी बात है? सबको पता है, पर जब गुस्सा आता है तो आता है। क्यों? क्योंकि हमने जो सीखा जाना अपने माइंड कि ये गुस्सा करना बुरी बात है, वो सिर्फ हमारे मन के उस 10% भाग को ही इन्फ्लुएंस्ड करता है, बाकी 90% वो हजार हजार जन्मों के संस्कारों का है जो हावी हो जाता है। इसलिए बहुत कष्ट है मन को शुद्ध करना, और जब हम वो ऐसे मन को शुद्ध कर पाए, ऐसा शुद्ध मन हो, तो फिर हम देवत्व के रास्ते पर चलेंगे। तो बाकी चीजों पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, आज का समय यही हो चुका है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।